पाठ 8 यीशु का न्याय होता है। स्वर्गदूत पृथ्वी को उतरे थे। उस वक्त उन्होंने अपने चमकीले मुकुट को दुख से उतार फेंका था। जब उनका कप्तान यीशु दुख उठा रहा था और कांटों का मुकुट पहना था तो उन्हें बड़ा दुख लगा। शैतान और उसके दूत न्यायालय में मनुष्य की हमदर्दी और मानवता को बिगाड़ने में व्यस्त थे। वहां का वातावरण बहुत ही बिगाड़ दिया गया था। मुख्य पुरोहित और प्राचीन लोग उनके प्रभाव से यीशु को अपमान कर रहे थे। ये अपमान इतना घृणित था कि मनुष्य के सहने से बाहर था। शैतान को आशा थी कि इस प्रकार की निंदा से वो घबराकर ईश्वर से शिकायत करना चाहे व अपना स्वर्गीय शक्ति व्यवहार करें, अपने को लोगों से छुड़ाकर उद्धार की योजना को पूरा न कर सकें। यीशु के पकड़े जाने पर पतरस भी यीशु के पीछे चला गया। वो देखने के लिए तरस रहा था कि यीशु को लोग क्या कहेंगे। जब उसे यीशु के साथ होने का दोष लगाया गया तो यीशु को इनकार कर दिया। अपने प्राण को खतरे में पड़ा देखकर जब उसे कहा गया कि तुम उसके साथ थे तो वो मुकर कर कहने लगा, मैं उसे नहीं जानता हूं। उसके चेले सत्यवादी के रूप में जाने जाते थे। यहां पतरस ने उन्हें ठड़ कर विश्वास दिलाया कि वो उसके चेलों में से नहीं है। इस प्रकार पतरस ने शपथ खाते हुए तीसरी बार यीशु को इनकार किया। यीशु कुछ ही दूर पर था। वो पतरस की ओर मुड़कर उदास मन से घुड़कने की दृष्टि से देखा। उपरौठी कोठरी में यीशु की कही हुई बात को और अपना गर्व वचन को याद किया। उसने कहा था कि यदि तेरे कारण सबको ठोकर खाना पड़े तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। उसने अपने प्रभु को कोसते और शपथ खाते हुए इनकार किया था। यीशु की उस पैनी दृष्टि ने पतरस का दिल को चूर चूर कर दिया और उसे बचा लिया। वो सिसक सिसक कर रोते हुए पश्चाताप करने लगा। उसका मन बदल गया और अपने भाइयों को संभालने को कहा गया। भीड़ के अधिकांश लोग यीशु को मार डालने के लिए तुले हुए थे। बड़ी क्रूरता से कोड़ा लगाने के बाद उसको बैंगनी वस्त्र से ओढ़ाया गया, मानो उसे राजा बना दिया गया, और उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया। एक सरकंडा उसके हाथ में देकर मजाक करते हुए उसे ये कहकर सलाम करने लगे, जय हो यहूदियों का राजा। उस सरकंडा को छीनकर उसी से उसके सिर पर मारे। इस मार से कांटों का मुकुट सिर और कपाल पर चुभ गए और लहू बहकर चेहरे और दाढ़ी को भिगो दिए। दूतों के लिए इस दर्दनाक दृश्य को देखा न गया। यीशु को वे उसके शत्रुओं से छुड़ा सकते थे, परंतु उनका कप्तान के कहने पर कि यीशु को इसी तरह कष्ट उठाकर मनुष्यों के लिए उद्धार कमाना है, छोड़ दिए। यीशु को मालूम था कि दूतगण उसकी इस प्रकार की परिस्थिति से अवगत हैं। मैंने दर्शन में देखा कि एक कमजोर दूत भी यीशु को उन उग्रवादियों से छुड़ा सकता था। यीशु जानता था कि यदि पिता से अर्जी करता तो तुरंत स्वर्गदूत उसे छुड़ाने के लिए दौड़े आते, परंतु मनुष्यों को बचाने के लिए जरूरत थी कि वो दुष्टों से दुख कष्ट भोगे। क्रोधित भीड़ के सामने यीशु दीनहीन होकर खड़ा था। उस पर नीच से नीचतर दोष लगाया जा रहा था। उन्होंने उसके चेहरे पर थूका। यही चेहरा से ईश्वर के नगर में उजियाला होगा और उसी चेहरे की ज्योति को लोग एक दिन देखकर भागेंगे और छिपेंगे, उसे वे नहीं जानते थे। इतने पर भी यीशु गुस्सा होकर उनकी ओर नहीं देखा, चुपचाप अपने हाथ से इसे पोंछ लिया। उन्होंने उसके वस्त्र से ही उसका चेहरा और आंखों को ढांक कर मारा और पूछा, बोलो किसने तुझे मारा? दूतों के बीच में सनसनी फैल गई। वे बचाना चाह रहे थे, पर फिर कप्तान दूत ने उन्हें मना किया। यीशु का जहां न्याय हो रहा था वहां चेले जाकर देखना चाहते थे। वे आशा कर रहे थे कि यीशु अपनी दैवी शक्ति से अपने को दुश्मनों के हाथों से मुक्त कर लेगा, बुराई का बदला भी चुकाएगा, ऐसी आशा कर रहे थे। विभिन्न दृश्य को देखकर उनकी आशाएं उठती गिरती थीं। कभी डर से ठगा जाने का धोखा खाते थे। उन्हें यीशु के रूपांतर के समय जैतून पहाड़ से सुनाई दिया था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसकी तुम सुनो। इसको स्मरण कर अपना विश्वास को दृढ़ करते थे। यीशु के आश्चर्य कर्मों को याद करने लगे। अंधों को आंख दिया था, बहिरों के कान खोले थे, भूतों को भूतग्रस्त लोगों से हटाया था, मुर्दों को जिलाया था, यहां तक कि आंधी तूफान को भी बंद किया था। इन्हें याद कर विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मरेगा। वे आशा लगाकर देख रहे थे कि अपनी शक्ति दिखाएगा, अपनी डांट से खून के प्यासे लोगों को खदेड़ेगा। एक बार यीशु ने मंदिर के ओसारे में सर्राफों और जानवरों के विक्रेताओं को खदेड़ दिया, वैसा ही करने की आशा उसके चेले लगा रहे थे। यीशु को धोखा देकर पकड़वाने के कारण यहूदा शर्म और पश्चाताप से नीरस हो उठा था। जब यीशु को ठट्ठा करते हुए देखा तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो उठा। वो रुपए पैसे को यीशु से अधिक प्यार करता था। वो नहीं जानता था कि दुश्मन लोग यीशु को बेइज्जत कर इतना कठोर दुख देंगे। वो सोचता था कि यीशु आश्चर्य रूप से उसके बीच से भाग जाएगा। जब उसने क्रोधित उग्रवादियों को न्यायालय में यीशु के खून का प्यासा देखा तो तुरंत भीड़ के बीच आकर कहने लगा कि मैंने इस निर्दोष व्यक्ति को तुम्हारे हवाले किया है, इसे छोड़ दो। उसने उनके दिए हुए रुपए भी वापस कर दिए। इस बात को सुनकर पुरोहित लोग घृणा और घबराहट में पड़ गए कि क्या करना होगा। वे लोगों को जनवाना नहीं चाहते थे कि यीशु का एक चेला के द्वारा उन्होंने उसे पकड़ा है। यीशु को चोर की तरह पकड़कर गुप्त रूप से न्याय करने को छिपाना चाहते थे, पर यहूदा की स्वीकृति और दोषी होने का चेहरा से लोगों को पता चला कि घृणा के कारण ही यीशु को पकड़ा गया है। यहूदा जोर से चिल्ला उठा कि यीशु निर्दोष है, तो पुरोहित ने कहा, इससे हमारा क्या आता जाता है, तू अपना देख ले। यीशु को वे अपने कब्जे से जाने देना नहीं चाहते थे। यहूदा वेदना से परिपूर्ण था। जिन लोगों ने पैसे का लालच देकर यीशु को पकड़वाने कहा था, उसे उन्हीं लोगों के पैरों तले फेंक दिया। अपने मानसिक वेदना का बोझ और खूनी होने का डर से बाहर जाकर अपने आप को फांसी दे दिया। उस भीड़ में यीशु के साथ सहानुभूति करने वाले बहुत थे। बहुत से प्रश्नों और दोषारोपण का कुछ भी उत्तर न देने से वे चकित थे। उसके चेहरे पर उसका कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा था। वो चुपचाप और शांत से खड़ा था। देखने वाले ताज्जुब कर रहे थे। उसका संयम, नियंत्रित मुख और अनोखा सहनशीलता को देखकर न्यायालय में बैठे लोगों के चरित्र से उसके चरित्र की तुलना कर कह रहे थे कि ये तो उनसे बढ़कर है, ये तो एक राजा होने का गुण रखता है। अपराधी होने का कोई चिन्ह उसके चेहरे में नहीं दिखाई देता था। उसकी आंखें सामान्य रूप से दिखती थीं, न झुकी हुई थीं और न कोई संदेह था। उसका कपाल चौड़ा और ऊपर उठा हुआ था। उसके चरित्र में दृढ़ता और नम्रता का सिद्धांत भरा हुआ दिखाई देता था। उसका गरज और सहनशीलता मनुष्य के समान नहीं था, जिसे देख बहुत लोग कांप उठे। यहां तक कि हेरोद राजा और पिलातुस गवर्नर भी उसका ईश्वर जैसा महान चरित्र को देखकर ताज्जुब करने लगे। पिलातुस को शुरू से ही मालूम था कि वो एक साधारण मनुष्य नहीं, पर एक उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति है। उसने तो उसे बिल्कुल निर्दोष मान लिया था। जो दूतगण पिलातुस का इस विश्वास को तथा यीशु के प्रति उसकी सहानुभूति को देख रहे थे, सहम गए। उनमें से एक दूत उसकी पत्नी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यह निर्दोष व्यक्ति है, इसके विरुद्ध कुछ हानि करने का आदेश मत देना। तुरंत उसकी पत्नी ने एक व्यक्ति को पिलातुस के पास भेजा और बताया कि मैंने इसके विषय स्वप्न देखा है कि यह एक पवित्र जन है। दूत भीड़ को चीरते हुए यह समाचार देने के लिए पिलातुस के पास पहुंचा। इसको पढ़कर वो डर गया। उसने सोचा कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है। यदि लोग यीशु को मार डालना चाहें तो मैं राजी नहीं हूंगा, पर बचाने की कोशिश करूंगा। जब पिलातुस ने सुना कि हेरोद राजा यरूशलेम में है, तो वो यीशु को उसी के पास भेजकर इस जटिल समस्या का समा न करने से अपने को बरी करना चाहा। उसने दोष लगाने वालों के साथ यीशु को उसके पास भेजा। हेरोद कठोर बन गया था। उसने यूहन्ना को कत्ल करवाया था और अभी तक उसका विवेक काम नहीं कर रहा था। वो यीशु के विषय सुना था कि बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य काम करता है, तो सोचने लगा कि हो सकता है यूहन्ना ही जीवित होकर आया है। उसका विवेक उसे दोषी ठहरा रहा था, इसलिए वो डर कर कांपने लगा था। पिलातुस ने यीशु को हेरोद के पास भेजा था। हेरोद सोच रहा था कि पिलातुस इस काम से हेरोद की शक्ति, अधिकार और न्याय को सम्मान करता है। पहले इन दोनों में अनबन था, पर इस काम से संधि हुई। हेरोद यीशु को बहुत दिनों से देखना चाहता था। वो उसका कोई बड़ा आश्चर्य कर्म देखकर संतुष्ट होना चाहता था, पर यीशु उसकी इस बड़ी चाह को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। स्वर्गीय आश्चर्य कर्म तो सिर्फ दूसरों की मुक्ति के लिए करना था, अपने लिए नहीं। हेरोद और उसके दुश्मनों ने बहुत सवाल पूछे और दोष भी लगाए, लेकिन उसने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। जब यीशु हेरोद के सामने नीडर खड़ा था, तो उसका आदर न करने के कारण वो उससे गुस्सा हुआ। वो अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उसको बेइज्जत करने लगे। हेरोद भी यीशु का ईश्वर सरीखा महिमामय चेहरा को देखकर मुग्ध हो गया। वो भी उसे अपराधी ठहराने से डरा और फिर पिलातुस के पास भेजा। शैतान और उसके बुरे दूत पिलातुस की परीक्षा कर रहे थे कि वो अपना अधिकार रखता है कि नहीं। उन्होंने उसे सलाह दी कि जब दूसरे लोग यीशु को दोषीगार ठहराकर मार डालना चाहते हैं और उन्हें इजाजत नहीं देगा, तो उसे भी कोई आदर नहीं देगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, उसे एक झूठा चरित्र वाला घोषित किया जाएगा। अपना अधिकार और शक्ति खोने के डर से वो यीशु को क्रूसघात करने के लिए राजी हुआ, बल्कि यीशु को खून करने का दोष को दोष लगाने वालों के ऊपर डाला। वे चिल्लाकर कहने लगे कि इसका दोष हमारे और हमारे बाल बच्चों के ऊपर पड़े। पिलातुस अब तक अपना विवेक के अनुसार अपने को निर्दोष नहीं मान रहा था। अपना स्वार्थी इच्छा से तथा पृथ्वी पर आदर मान पाने के लालच से उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मरने के लिए दुश्मनों के हाथ में सौंप दिया। यदि पिलातुस अपना विवेक के अनुसार चला होता, तो यीशु को कोई कुछ नहीं कर सकता था। यीशु को जब न्यायालय में दोष लगाने का काम चल रहा था, तो बहुत लोगों के मन में विचार उठ रहा था कि जी उठने पर इसका क्या प्रभाव होगा। बहुत लोग जो यीशु को उसकी परीक्षा और दुख उठाने का समय से देख रहे थे, उनका विश्वास था कि वो ईश्वर का पुत्र है और उसका चेला बनना स्वीकार करेंगे। शैतान ने यीशु को दुख देने के लिए पुरोहितों को क्रूरता से व्यवहार करने के लिए भड़काया था, पर उसने बिना कुड़कुड़ाए सब सह लिया था। मैंने देखा कि यद्यपि यीशु मनुष्य का स्वभाव लेकर आया था, फिर भी ईश्वर के समान उसमें सहनशीलता थी। इसलिए सब प्रकार के दुख कष्टों को सहा, पर पिता की इच्छा को लेश मात्र भी नहीं तोड़ा। मत्ती 27 से आधारित है।